नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा, अगले वर्ष तक डीटीसी की सभी बसों को इलेक्ट्रिक बनाना सरकार का लक्ष्य। दिल्ली के पेट्रोल पंपों में आज से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं तो ईंधन नहीं नियम लागू। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने पिछले महीने हुए दिल्ली बम धमाके के सिलसिले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आईटीओ स्थित असिता पार्क लॉन को विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति दी। और जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में सुजल ग्राम संवाद का दूसरा संस्करण आयोजित करेगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कश्मीरी गेट अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले वर्ष तक डीटीसी की सभी बसों को इलेक्ट्रिक बनाना है, ताकि दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह कार्बन उत्सर्जन मुक्त हो सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में जुड़ रही ये बसें राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जब प्रदूषण पे चर्चा होती है तो सबसे कारगर समाधान है कि सार्वजनिक परिवहन को दुरुस्त किया जाए, ताकि अधिकतम लोग सार्वजनिक परिवहन से जुड़े। और आज जिस तरीके से सरकार लगातार दिल्ली के परिवहन व्यवस्था को ठीक करने में जुटी है, 3400 बसें हमारी ईवी की आज तक हो गई है, जिसे अगले साल तक बढ़ाया जाएगा और कोशिश की जाएगी पूरी की पूरी बस फ्लीट टोटल ईवी पे आ जाए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आज से दिल्ली के धौला कुआं से हरियाणा के धारूहेड़ा तक अंतर्राज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत भी की गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा है कि सरकार दिल्ली में वायु गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या पिछली आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामी का परिणाम है। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार ने इस समस्या पर कार्य करने के बजाय केवल जनता को गुमराह किया।
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्लास्टिक कचरा, इलेक्ट्रिक वाहन नीति, फ्लाईओवर, नई सड़कें, आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसमें से आधे काम भी किए होते तो हमको बाकी के काम करने पड़ते। मगर केजरीवाल जी ने केवल दिल्ली की जनता को गुमराह किया, धोखा दिया। ये जो सारे कामों का पहाड़ बन गया, ये सारे काम हमको करने पड़ रहे हैं। जो एक्चुअल में ग्राउंड पे काम होने चाहिए थे वो पिछले 9 महीने से होना शुरू हुए।
श्री सिंह ने लोगों से वायु प्रदूषण कम करने में सरकार का सहयोग करने की अपील की।
दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या 4 महीने में खत्म नहीं हो पाएगी, 6 महीने में खत्म नहीं हो पाएगी, हर साल धीरे धीरे खत्म होगी। और दिल्ली की जनता के ऊपर में हम कोई भी हार्श रूल नहीं लगाना चाहते। इसके लिए दिल्ली की जनता को हमारे साथ में सहयोग करना है। दिल्ली की जनता को दिल्ली सरकार द्वारा जो भी एडवाइजरी जारी की जाए वो उसको उसका पालन करना है। दिल्ली की जनता को लेन ड्राइविंग करने की आदत डालनी है, ताकि रोड पर जाम ना लगे।
वायु प्रदूषण के मद्देनजर चलाए जा रहे बहुआयामी अभियान के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने आज से PUCC नहीं तो ईंधन नहीं नियम का सख्ती से पालन शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नियम के लागू होते ही राजधानी के पेट्रोल पंपों ने उन वाहनों को ईंधन देना बंद कर दिया है जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण PUC प्रमाण पत्र नहीं है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एजेंसियों, पेट्रोल पंप संचालकों और पुलिस को पहले दिन से ही अनुपालन सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। PUCC और अन्य नियमों के पालन की निगरानी कैमरा आधारित प्रणाली से की जा रही है। सरकार ने राजधानी में निर्माण सामग्री लाने वाले ट्रकों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त BS6 से नीचे की श्रेणी में आने वाले निजी वाहनों को राजधानी में प्रवेश नहीं मिल रहा है। हालांकि CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों, सार्वजनिक वाहनों और आवश्यक सेवाओं में लगे गैर BS6 वाहनों पर प्रतिबंध लागू नहीं है। इसके लिए सीमा चौकियों सहित 126 जांच चौकियों पर 580 पुलिसकर्मी 37 प्रखर वैन के साथ तैनात रहेंगे। परिवहन विभाग की टीम पेट्रोल पंपों और प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर तैनात रहेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के वाहनों को ईंधन नहीं मिलने वाले नियम को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य वायु गुणवत्ता सूचकांक को कम करना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC उत्तर प्रदेश में जल्द ही 110 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट का निर्माण करेगा। ये कार्य NLC इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया है, जो केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाला एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये संयंत्र प्रदेश की ग्रिड से जोड़ा जाएगा, जिसके माध्यम से नमो भारत कॉरिडोर पर बने रिसीविंग सबस्टेशनों तक विद्युत आपूर्ति की जाएगी। इस पहल से प्रतिवर्ष लगभग 170,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आएगी, जिससे स्वच्छ और सतत शहरी परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने पिछले महीने हुए दिल्ली बम धमाके के सिलसिले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला यासिर अहमद डार है। यासिर को NIA की एक टीम ने दिल्ली से पकड़ा। एजेंसी ने उसे लाल किले के इलाके में हुए उस आतंकी हमले की साजिश में शामिल पाया, जिसमें 11 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए थे। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मॉडल टाउन क्षेत्र में एक अवैध अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि ये कॉल सेंटर एक अंतर्राष्ट्रीय निजी कंपनी टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर चल रहा था, जो विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर उनसे क्रिप्टो करेंसी के रूप में धोखाधड़ी कर रहा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन और अवैध सिम कार्ड बरामद किए हैं। साथ ही विदेशी नागरिकों के बैंक से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच अभी जारी है। दिल्ली पुलिस की महिला और बाल मामलों के लिए विशेष इकाई ने अपने 10वें आत्मरक्षा शीतकालीन शिविर 2025-26 के लिए लोगों से पंजीकरण आमंत्रित किए हैं। ये शिविर शहर में 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। इनमें मयूर विहार का मदर मैरी स्कूल, नांगलोई का राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और इंद्रपुरी तथा आरकेपुरम क्षेत्र का एक एक विद्यालय शामिल है। इस शिविर में छात्राएं, कामकाजी महिलाएं और गृहिणियां आत्मरक्षा तकनीकों का प्रशिक्षण निःशुल्क ले सकती हैं। ये शिविर इस महीने की 30 तारीख से अगले महीने की 14 तारीख तक चलेगा। शिविर में भाग लेने के लिए पंजीकरण इस महीने की 26 तारीख तक किया जा सकता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ITO के पास स्थित असिता पार्क के हरे भरे लॉन को विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आरक्षित करने की अनुमति दी है। असिता पार्क में स्वीकृत दैनिक किराया लॉन अनुसार अलग अलग होगा, जिसकी सीमा 40,000 रुपए से लेकर 3,30,000 रुपए तक है। प्राधिकरण ने बताया है कि एक या अधिक क्षेत्र एक साथ किराए पर लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि एक से अधिक क्षेत्रों की बुकिंग के मामले में लागू दरें अधिक होंगी, जिसमें 40 वाहनों की पार्किंग का किराया शामिल होगा। प्राधिकरण ने कहा कि यमुना फ्लड प्लेन्स की रक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी बुकिंग सख्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशा निर्देशों के अधीन की जाएंगी। इसके साथ ही पर्यावरण के अनुकूल अस्थायी टेंट संरचनाओं को स्थापित और उन्हें हटाने के लिए अधिकतम 3 दिन दिए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में सुजल ग्राम संवाद का दूसरा संस्करण आयोजित कर रहा है। मंत्रालय ने बताया कि एक बहुभाषी मंच के रूप में ये महत्वपूर्ण पहल केंद्र और ग्रामीण समुदायों के बीच सीधे संवाद की पूर्ति करती है। सुजल ग्राम संवाद नीति निर्माताओं और जमीनी स्तर के लोगों के बीच एक सेतु बनाने के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। इस बीच दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई कार्यक्रम के कारण दिल्ली के कुछ इलाकों में इस महीने की 20 और 22 तारीख को पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड के अनुसार 20 तारीख को मयूर विहार फेज 3 के DDA फ्लैट्स में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी, वहीं 22 तारीख को निर्माण विहार, प्रीत विहार, लक्ष्मी नगर, शकरपुर, सरोजनी नगर में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपनी जरूरत के अनुसार पहले से पानी जमा कर लें, पानी के टैंकर टेलीफोन नंबर 1916 पर उपलब्ध रहेंगे। प्रतिष्ठित मूर्तिकार राम वनजी सुतार का कल देर रात उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 100 वर्ष के थे। श्री सुतार गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने के लिए प्रख्यात हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पद्म भूषण राम सुतार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री सुतार के असाधारण योगदान ने भारत की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि महान मूर्तिकार का भारतीय कला में असाधारण योगदान रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे उत्कृष्ट मूर्तिकार थे जिनकी कला ने भारत को कुछ सबसे मशहूर स्मारक दिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी प्रख्यात मूर्तिकार राम वी सुतार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री सुतार का निधन भारतीय कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज शाम नई दिल्ली में कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित वार्षिक क्रिसमस समारोह में भाग लिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ CV आनंद बोस भी इस अवसर पर उपस्थित थे। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि क्रिसमस का त्यौहार सभी को शांति, करुणा, विनम्रता और मानवता की सेवा जैसे मूल्यों की याद दिलाता है। क्रिसमस और नए साल के अवसर पर यात्रियों की संभावित भीड़ के मद्देनजर भारतीय रेलवे 9 जोन में 138 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इन रेलगाड़ियों की 650 ट्रिप प्रस्तावित और स्वीकृत की जा चुकी हैं। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अब तक 244 ट्रिप अधिसूचित की जा चुकी हैं। मंत्रालय ने बताया है कि इन विशेष रेलगाड़ियों को चलाकर रेलवे अतिरिक्त क्षमता, आराम और सुविधा प्रदान कर रहा है, जिससे यात्रियों को बिना किसी परेशानी के क्रिसमस और नए साल मनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय राजधानी में आज दिन में मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज खराब स्तर पर रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शाम 7 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 387 दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा, अगले वर्ष तक DTC की सभी बसों को इलेक्ट्रिक बनाना सरकार का लक्ष्य। दिल्ली के पेट्रोल पंपों में आज से PUCC नहीं तो ईंधन नहीं नियम लागू। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने पिछले महीने हुए दिल्ली बम धमाके के सिलसिले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ITO स्थित असिता पार्क लॉन को विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति दी। और जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में सुजल ग्राम संवाद का दूसरा संस्करण आयोजित करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।